السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اور اس مہینے میں بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں. یہ عمل بہت عظیم عمل ہے، شاید اس کی اتنی قدر و قیمت ہم اس دنیا میں نہیں جانتے، مگر قراء کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے. وہ لوگ جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آج ان کا تھوڑا سا حال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، جو ایک خواب کی صورت میں ہے. یہ خواب امام حمزہ نے دیکھا، جو کہ سبا قرات کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. ان کا یہ خواب حافظ المزی نے تہذیب الکمال میں تحریر کیا، امام ابن جوزی نے صفوة الصفوة میں، اور امام ابن شاہین نے اپنی کتاب جو الاشارات فی علم العبارات ہے، اور اس میں خوابوں کی تعبیر سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں یہ خواب نقل کیا ہے. خواب کچھ یوں ہے: خلف بن حشام البزار اس خواب کے راوی ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ امام حمزہ کے پاس گئے تو وہ اپنے گالوں کو رگڑ رگڑ کے رو رہے تھے. کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے ان کو روکنا چاہا، حفاظت میں لینا چاہا، تو شیخ حمزہ کہنے لگے تم مجھے کس سے بچاؤ گے؟ پھر حمزہ فرمانے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت تند و تیز ہوا چل رہی ہے، جیسے قیامت کا سماں ہو، اور قراء کرام بلائے جا رہے ہیں. قراء کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، ان میں ایک میں بھی ہوں. پھر میں نے ایک پکارنے والے کو پکارتے سنا، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں پکار رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو قرآن جانتا ہے، جس نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارا ہے. مجھے تذبذب ہوا اور میں پیچھے ہٹنے لگا. یعنی کیا کسی نے کہا؟ کوئی ایک خوبصورت آواز تھی جس نے کیا کہا؟ مجھ تک رسائی کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو قرآن جانتا ہے اور جس نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاری ہے. تو کہتے ہیں میں پیچھے ہٹنے لگا. اسی وقت میں نے پکارنے والے کی ایک اور پکار کو سنا کہ وہ میرا نام پکار رہا ہے، حمزہ کہاں ہے؟ میں نے کہا لبیک. اسی وقت ایک فرشتے نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہو لبیک اللہم لبیک، تو میں نے ایسے ہی کہا. پھر مجھے ایک گھر میں داخل کیا گیا جہاں بہت سارے قراء کی تلاوت کی آوازیں گونج رہی تھیں. میں رکا اور پھر میں نے دوڑنا شروع کر دیا. میں پریشان تھا کہ میں کہاں ہوں. میں نے پھر ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا، آج کے دن دوڑو نہیں، اوپر چڑھو اور تلاوت شروع کر دو. میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں ایک ممبر پہ کھڑا تھا جو سفید موتیوں سے بنا ہوا تھا. اس کے ایک طرف پیلے یاقوت تھے اور ایک طرف سبز زمرد. مجھے پکارنے والے نے پھر کہا چڑھو اور تلاوت کرو. اس بار میں چڑھا، پھر کہا گیا سورۃ الانعام کی تلاوت شروع کرو. میں نے تلاوت شروع کی، یہ جانے بغیر کہ مجھے کون پکار رہا ہے، کون یہ بار بار مجھ سے کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ میں نے 60 آیات کی تلاوت کر لی، 60. جب میں نے 60 آیات پڑھ لی اور اگلی آیت شروع کی، جو سورہ نام کی 61 آیت ہے، وہ ایسے شروع ہوتی ہے، वहू अल काहिरु फौका इबादी। तो पुकारने वाले ने मुझे पुकारा, क्या मैं अपने बंदों पर गालिब नहीं हूं? मैंने कहा, क्यों नहीं, ये इमाम हमजा अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि पुकारने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तुमने सच कहा, पढ़ो। मैंने फिर तिलावत शुरू की, यहाँ तक कि पूरी सूरतुल अनआम पढ़ ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर फरमाया, और पढ़ो। फिर मैंने सूरह आराफ शुरू की, यहाँ तक कि उसे भी मुकम्मल कर डाला। जब मैंने अल आराफ की आखिरी आयत शुरू की, तो जैसे आपको पता है कि सूरह आराफ की आखिरी आयत के एंड में सजदा तिलावत है, कहते हैं जब मैं वहां तक पहुंचा तो मैंने सजदा करना चाहा, अल्लाह सुबहाना हुआ ताला फरमाने लगा, हिसाब का वक्त खत्म हो चुका, अब रहने दो। अल्लाह अकबर। आपको पता है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है ना, कि कुरान के हाफिज को कहा जाएगा कि पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। सुबहान अल्लाह। तो वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने फिर पूछा, तुम्हें किरात किसने सिखाई? अल्लाह अकबर। जिस दिन अल्लाह ताला, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाएगा कि तिलावत करो, उस दिन इंसान का हाल क्या होगा? खुद को कभी इमेजिन करते कि अल्लाह ताला मुझे कह रहा हो कि तुम पढ़ो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, तो दिल की कैफियत क्या होगी? उस दिन को कभी सोचा करें। तो कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे पूछा, तुम्हें किरात किसने सिखाई? मैंने कहा, सुलेमान ने, यानी आमश ने। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुलेमान ने सच सिखाया। सुलेमान को किसने सिखाया? मैंने जवाब दिया, यहया ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यहया ने सच सिखाया, यहया को किसने सिखाया? अब ये वो चेन है जो ऊपर से ऊपर चली जा रही है ना, कि इमाम हमजा ने आमश से सीखा, आमश ने यहया से सीखा, अब यहया को किसने सिखाया? मैंने जवाब दिया, अबू अब्दुर्रहमान असलमी ने। अल्लाह अज्जा वजल ने फरमाया, अबू अब्दुर्रहमान ने सच सिखाया, उसको किसने सिखाया? मैंने जवाब दिया, आपके पैगंबर के चचा के बेटे ने, यानी अली बिन अबी तालिब। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, अली को किसने सिखाया? मैंने जवाब दिया, आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया, मेरे नबी को किसने सिखाया? मैंने कहा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाने लगे, जिब्राईल को किसने सिखाया? हमजा फरमाते हैं, मैं ये सुन के खामोश हो गया। अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया, कहो हमजा, आपने सिखाया। हमजा कहने लगे, मैं जुर्रत नहीं कर सका कि अल्लाह ताला के सामने खड़े होके कहूं कि आपने सिखाया। अल्लाह रब इज्जत ने फिर फरमाया, कहो हमजा, आपने। मैंने कहा, आपने। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाने लगे, तुमने सच कहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने लगे, कुरान के हकूक में से ये हक है कि मैं अहलुल कुरान को इज्जत दूँ, खसूसन उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढाला। ए हमजा, कुरान मेरा कलाम है और अहलुल कुरान से मुझसे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता। ए हमजा, मेरे करीब आओ। मैं इतना करीब चला गया, फिर अल्लाह ताला ने अपना हाथ खुशबू में डाला जिसका नाम अलगालिया था, मुझे वो खुशबू लगाई। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने लगे, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं किया, बल्कि तुमसे पहले आने वाले और तुमसे बाद आने वाले कुर्रा के साथ भी यही कुछ किया, और जो भी कुरान पढ़ेगा उसके लिए ऐसा ही होगा जैसे तुम्हारे साथ हुआ। अल्लाह अकबर। अपने दोस्तों को, अपने करीब लोगों को खबर दे दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इमाम हमजा को ख्वाब में फरमाया कि अपने दोस्तों को और अपने करीब लोगों को खबर दे दो। क्या खबर देने का? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये खबर दे दो कि अल्लाह ताला कैसे कुरान वालों की इज्जत करता है और कैसे उनसे मोहब्बत करता है। यकीनन वो बरगजीदा और चुने हुए लोग हैं। ए हमजा, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं उनको अजाब नहीं दूंगा। इस जुबान को जो जहन्नुम को जहन्नुम इस जुबान को जहन्नुम की आग नहीं छुएगी, जिस जुबान ने कुरान की तिलावत की होगी, उस दिल को जहन्नुम की आग नहीं छुएगी जिस दिल ने कुरान से तकवा इख्तियार किया होगा, और उन कानों को आग नहीं छुएगी जिन कानों ने इस कुरान को सुना होगा, और ना ही उन आंखों को जहन्नुम की आग छुएगी जिन आंखों ने इस कुरान को देखा होगा। हमजा कहते हैं, फिर मैंने कहा, सुभानक रब्बी सुभानक रब्बी, मेरा रब पाक है, मेरा रब पाक है। फिर अल्लाह सुबहाना तआला ने फरमाया, ए हमजा, जो कुरान को देख कर पढ़ते हैं उनको भी ये अजर मिलेगा सबको। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, कि जो हाफिज नहीं है लेकिन कुरान को देख कर पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगियां इस कुरान के मुताबिक गुजारी, अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दे दी कि ऐसी आंखों को, ऐसे कानों को, ऐसी जुबान को जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। इतनी बड़ी सआदत है। जानते हैं आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था कि कुछ लोग अहलुल्लाह होते हैं, तो सहाबा ने पूछा वो कौन है, आपने फरमाया कुरान वाले। कुरान वालों को अल्लाह ताला अपना अहल फरमाता है कि ये मेरे अहल हैं और मेरे खास बंदे जिनका ताल्लुक कुरान से हो। जितना वक्त आप कुरान को दे सके दे दे, क्योंकि देखिए ये कुरान ही है जो निजात का बायस बनेगा कयामत के दिन, ये कुरान ही है जो सिफारशी बनेगा कयामत के दिन। इब्ने तैमिया आम दिनों में भी 10 दिन में एक दफा कुरान खत्म करते थे, और जब उनको जेल में डाल दिया गया था मिस्र में, तो 3 दिन में एक कुरान मुकम्मल कर लेते थे, यानी दिन में 10 पारे पढ़ते थे। और जेल में जितनी किताबें लिखी उनमें बार बार ये लिखते थे, अल्लाह ताला ने ये फरमाया, अल्लाह ताला ने ये फरमाया, ने इतना कुरान जो पढ़ा हुआ था। और जब जेल में थे तो 80 मरतबा कुरान मुकम्मल किया, और जब 81st टाइम जब पढ़ रहे थे, तो जब ये आयात आई कि इन्नल मुत्तकीन फी जन्नत व नहर, तो फी मक़ाद सिद्क इंद अल मलिक अल मुक्तदिर, के मुत्तकी लोगों के लिए जन्नत और नहरें होंगी, अपने रब के हाँ इजाज़ के मकाम होंगे। इस आयत पर जब पहुंचे, इस पर उनकी वफात हुई थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की जिंदगी में, इसलिए कि कुरान करीम की खिदमत में लगे रहे। और जब वफात हुई, वक्त आया, तो फरमाया, मैं पछताता हूं कि मैंने कुरान के अलावा अपनी जिंदगी को और चीजों में जाया कर दिया। सोचे कि जब हमारा ये वक्त आएगा तो कहीं हमें ये महसूस तो नहीं होगा कि हमने और चीजों में अपना वक्त जाया कर दिया और कुरान को वक्त नहीं दिया। सुफियान सॉरी ताबेई हैं, कहते हैं, काश मैं अपनी पूरी जिंदगी कुरान के साथ ही गुजारता। अल्लाहु अकबर, ये है कुरान वालों का मकाम, ये हैं उन लोगों के दर्जात। और कितना भी वक्त दे दें, ये वो लोग हैं जो कुरान को इतना ज्यादा वक्त देते थे, फिर भी वो यही सोचते रहे कि हमने वक्त कम दिया इस किताब को, हमें और ज्यादा वक्त देना चाहिए था। जो कुरान को पढ़ते हैं, जो इसको वक्त देते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता है वो नबुव्वत को अपने दाएं बाएं करीब कर लेता है। ताहम उसकी तरफ वही नहीं आती, यानी वही नहीं आती लेकिन जैसे नबुवत के दर्जे के करीब पहुंच जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले को मुनासिब नहीं है कि उसके सीने में कुरान हो और वो मोहब्बत बहसे करने वालों के साथ बहसे शुरू करते और जाहिलों के साथ जाहिल बन जाए, ये उसको मुनासिब नहीं है। सुबहान अल्लाह, यानी उसका किरदार, उसका अखलाक डिफरेंट होना चाहिए। उसको बहस मुबाहसे में, झगड़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, लोगों के साथ तू तू मैं नहीं करनी चाहिए। वो कुरान वाला है, वो अहलुल्लाह में से है। ये बहुत बड़ा एजाज है, जो किसी और नेकी पे ये नहीं कहा गया कि वो अल्लाह के अहल में से है और उसके स्पेशल लोगों में से है, मगर कुरान वालों को कहा गया, जिनका जिनका तذकरा ही कुरान से हो, जिनकी निस्बत कुरान से हो, वो कुरान के साथ इतना वक्त लगाते हो कि उनकी शोहरत ही कुरान की वजह से। तो अल्लाह ताला हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल फरमाए जो कुरान के जरिए पहचाने जाते हो, इस दुनिया में भी और आखरत में भी। तो ये बहुत ही खूबसूरत ख्वाब इमाम हमजा का मैंने आपके सामने रखा है, जो मेरा अपना बहुत ही पसंदीदा एक वाकया ख्वाब का ऐसा है, और आप भी इससे सीख सकते हैं। अपने दिलों में कुरान के शौक को बढ़ाइए, इसको फालतू चीज ना समझिए, इसके बारे में ये सवाल ना किया करें कि कुरान सीखना फर्ज है कि क्या है, सुन्नत है कि क्या है, ये ना करा करें, ये ना पूछा करें। और अल्लाह ताला की इस नेमत पर हमेशा शुक्र गुजार रहे, ये बहुत बड़ी नेमत है और रहमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, और शिफा है दिलों की बीमारियों की। तो ज्यादा वक्त कुरान को दे, और रमजान के बाद भी कुरान के साथ अपना वक्त लगाइए, तहिया कर लीजिए इस रमजान से कि मैंने कुरान को वक्त देना है। आज आपको एक ऐसा मैं तरीका बताना चाहती हूँ जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाता है। वो क्या है कि जब भी आप खाएं और पिएं, सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त, ये रमजान के बाद भी एक आदत बना लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कहने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मोमिन पानी पीता है और खाना खाता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला को राजी करना है, तो जब भी मुंह में कोई लुकमा जाए या कोई घूंट पानी का या किसी चीज का भी मुंह में जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जुबान पे होना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला उन लोगों से भी राजी होता है जो सुबह शाम अल्लाह ताला का जिक्र करते, अल्लाह ताला की तस्बीह करते, ये भी अल्लाह ताला को राजी कर देता है। इसी तरह वो लोग भी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला राजी हो जाता है, जो मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं मुंह की सफाई के लिए। आप बेशक टूथब्रश भी करें, मगर मिसवाक भी कभी कर लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मिसवाक करते थे, जब घर आते थे तो सबसे पहला काम मिसवाक करते थे, घर से जाते थे तो मिसवाक करके जाते थे, यानी घर से निकलते वक्त, सोने लगते तो मिसवाक करते थे, रात को जब उठते थे तहज्जुद के लिए तो सबसे पहले मिसवाक करते थे। हत्ता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त करीब था, तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक देखी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के भाई के हाथ में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल नहीं पा रहे थे, मगर आपकी बात को आपकी जौजा मोहतरमा उम्महातुल मोमिनीन में से आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने समझ लिया, और उन्होंने अपने भाई से मिसवाक लेकर उसको नरम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आखिरी अमल जो आपने किया वो यही मिसवाक करना था। तो इससे भी अल्लाह ताला राजी होता है। इसी तरह वालिद की रजा में अल्लाह ताला की रजा है, जो बाप होता है वो जन्नत का एक बड़ा दरवाजा है। इसकी कोशिश करें कि वालदैन को राजी रखें, उनकी खिदमत करें, वालदैन करीब हैं, उनको खुश करने की कोशिश करें, देखें वो किन बातों से खुश होते हैं, उनको कभी भी नाराज करने की जरूरत ना करें, उनके लिए वो चीजों का एहतमाम करें जिनसे उनके दिल खुश हो जाए आपकी तरफ से। तो जैसे हदीस में है कि बाप राजी है तो अल्लाह ताला राजी है, तो बाप को राजी करने में लगे रहें, कोशिशों में लगे रहें। आज का जो जिक्र है वो भी अल्लाह ताला की रजा के मुतल्लिक ही है। ये इंसान अल्लाह से राजी होता है, अल्लाह ताला के फैसलों से राजी होता है, अल्लाह ताला की रजा में राजी होता है, तो अल्लाह ताला भी उससे राजी होता है। तो आज का जिक्र जो है इसके भी बड़े ही फवाइद है। ये क्या जिक्र है? रदीतु बिल्लाहि रब्बं व बिल इस्लामी दीनं व बि मुहम्मदिन नबिया। मैं राजी हूँ किस बात से कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। जानते हैं इस जिक्र के बहुत सारे फजाइल हैं। एक फजीलत यह है कि इससे गुनाह माफ होते हैं, गुनाह धुलते हैं, अल्लाह ताला माफ कर देता है। दूसरी बात ये बहुत बड़ी बात कि जो ये जिक्र करेगा सुबह और शाम, यानी 3 दफा सुबह इस जिक्र को करे और 3 मरतबा शाम को इस जिक्र को करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसको हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल कराऊंगा। और एक और फायदा इस जिक्र का ये है कि जालिम के जुल्म से इंसान को बचा लिया जाएगा। तो जिसको लगता है कि उसके ऊपर कोई जुल्म करने वाला है वो इस जिक्र को किया करे। एक और फायदा इस जिक्र का ये है, पांचवा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिलेगी। तो इस जिक्र के बहुत सारे फवायद हैं। और फिर जब आप राजी हो गए तो अल्लाह ताला भी आपसे राजी हो जाएगा। लिहाजा इस जिक्र की आदत बनाइए। इसी तरह सदका देने में कभी भी पीछे ना हटे। आजकल बहुत सारे लोग इस उम्मीद में, जो मुफलिस होते हैं, जो मिस्कीन होते हैं, इस उम्मीद में कि रमज़ान का महीना है तो हो सकता है आपसे रुजू करें, तो इससे तंग कभी ना पड़े कि हर कोई मांगने आ जाता है, हर कोई सवाल कर रहा है। ये शुक्र अदा करें कि आप सदका लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से अल्लाह ताला ने आपको बनाया, आपको ऊपर वाला हाथ दिया, नीचे वाला हाथ नहीं दिया। तो आप भी उसकी जगह हो सकते थे जो सदका लेने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ है। तो सदका करने का क्या फायदा है? सदका करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सदका अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करता है। अगर अल्लाह ताला का गुस्सा है किसी बंदे के ऊपर, तो वो गुस्सा ठंडा हो जाता है सदके के जरिए। और अगर कोई बुरी मौत से बचना चाहता है तो वो भी सदका करे, अल्लाह ताला उसको बुरी मौत से बचा लेगा। तो सदका इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। आप दूसरे का फायदा नहीं ये सोचें कि ये मेरा फायदा है इसके अंदर, और ये शुक्र है कि दूसरा मुझसे लेकर और मुझे इस नेकी का मौका दे रहा है, क्योंकि कयामत के नजदीक कोई लेने वाला नहीं होगा। इंसान अपना सदका लेके फिरेगा लेकिन कोई भी नहीं होगा जो सदके को कबूल करने वाला हो। लिहाजा अभी इसी दुनिया के अंदर इस चीज को, इस नेकी को आप कर लें, ताकि इससे पहले कि उस ये इसका वक्त खत्म हो जाए, क्योंकि मौत का वक्त आ गया तो फिर भी सदके का चांस खत्म हो जाएगा। फिर इंसान कहेगा कि अल्लाह मुझे इतनी मोहलत देता कि मैं कुछ सदका ही कर देता, लेकिन फिर मोहलत खत्म हो जाती है। इसी तरह कयामत के करीब भी ये फिर नेकी ही उठ जाएगी। ये नेकी आपके पास माल हो भी तब भी आप ये नेकी तब नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब कोई लेगा ही नहीं तो फिर नेकी किसके साथ करेंगे? तो सदका करें, बहुत ज्यादा करें। इसी तरह आप अगर कभी सो और सोते वक्त आपने अलार्म लगाया और अलार्म नहीं बजा, जब आपकी आंख खुली तो उस वक्त सहरी का टाइम भी गुजर चुका था, फजर का टाइम हो गया था या अजान हो रही थी, तो तब भी चंद घूंट पानी के ही जरूर पी लें ताकि आपको सहरी का सवाब मिल जाए। और सहरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत है। और अगर आपकी वितर की नमाज रह गई थी, क्योंकि हमें चाहिए कि वितर हम आखिरी नमाज को बनाएं, यानी जब सारी नमाज ख़त्म कर लें तो उसका एंड वितर पे करें, तो अगर आपने तरावी पढ़ी रात को और आपने फिर ये सोचा था कि मैं उठ जाऊंगी सहरी से पहले और मैं वितर अदा कर लूंगी कुछ नवाफिल के बाद, तो अब आपकी आंख ही नहीं जब खुली तो अब वितर भी रह गए, वो नफल रह गए तो कोई बात नहीं, ये वितर भी रह गए, तो अब क्या किया जाए? अब इसका तरीका ये है, और ये रमजान के बाद के लिए भी याद रखिए कि कभी भी आपके वितर रह जाएं किसी भी वजह से तो अब क्या कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है अदा करने का। तो जब सूरज चढ़ जाए यानी सनराइज हो चुका है, उसके बाद से लेके जोहर से पहले पहले तक, जवाल के वक्त से पहले पहले तक, आपने वो जो वितर आपने छोड़े थे वो देखें कि आप कितने वितर पढ़ते थे। अक्सर हम तीन वितर पढ़ते हैं, वितर एक भी होता है, तीन भी होता है, पांच भी होते हैं, सात भी होते हैं, तो अगर हम तीन वितर पढ़ते हैं तो अब आप इस टाइम पे इस विंडो में जो मैंने आपको बताई है इसके अंदर आप इवन नंबर के अंदर अदा करेंगे रकअत, और ये आपकी वितर के लिए काफी हो जाएगा। यानी अगर आप तीन वितर रात को पढ़ने की आपको आदत है तो अब आप चार रकअत नमाज पढ़ लेंगे तो ये उस वितर के लिए काफी हो जाएगा। अब ऑड में नहीं आपने पढ़ना, अब इवन में पढ़ना है, ठीक है? तो इस बात को नोट कर लीजिए। एक और बहुत जरूरी चीज जो मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ वो ये कि जब भी आप फर्ज नमाज अदा कर लें तो उसके बाद आयतल कुर्सी जरूर पढ़ें। आयतल कुर्सी पढ़ने का क्या फायदा है? थोड़ी देर लगती है इसके अंदर। फायदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत है। यानी जूं ही मौत आएगी इंसान जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये इतना अजीम अमल है, इतना बड़ा अमल है, तो ऐसा नहीं कि फौरन उठ के भागने की करें सलाम फेरने के बाद, बल्कि नमाज के बाद के अस्कार भी कीजिए और आयतल कुर्सी लाजमी पढ़िए हर फर्ज नमाज के बाद। ये आपके लिए जन्नत में दाखिले की गारंटी देता है। आज की दुआ वो है जो हमारे सल्फ सालेहीन बहुत मांगा करते थे, हमारे असलाफ में इस चीज का बहुत एहतमाम किया जाता था कि तीन दुआएं वो मांगते थे रेगुलरली। एक तो यही जो पहले हम कर चुके हैं, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, और दो दुआएं वो इसी से मुतल्लिक हैं कि अल्लाह ताला हमारा अच्छा अंजाम करें। जैसे मैंने आपको बताया कि सदका भी बुरी मौत से बचाता है, तो दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा अच्छा खात्मा कर दे। तो हमारे सलफ क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नल खातिमा, अल्लाह मेरा अच्छा खात्मा करना, अच्छा अंजाम करना, मैं इसका सवाल करता हूँ तुझसे। तो अच्छा खात्मा क्या है कि ईमान पे मौत आए, कलमा जुबान पे जारी हो जाए, इंसान की मौत के वक्त उसका यकीन अल्लाह ताला पे हो, ये अच्छा खात्मा है। इसी तरह दूसरी दुआ वो ये एक और करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तौबतन नसूह कबल अल मौत, अल्लाह मुझे पक्की सच्ची तौबा की तौफीक दे देना मौत से पहले, मौत से पहले मुझसे तौबा की तौफीक अता फरमा देना।
इस दुआ को अगर आप वक्फ के साथ पढ़ेंगे तो तौबतन नसूहा, और अगर वक्फ के बगैर पढ़ेंगे तो तौबतन नसूहान।
ये दुआएं बहुत प्यारी दुआएं और हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिसने तौबा कर ली मौत से पहले तो उसकी बख्शिश हो गई, फिर उसके लिए आगे बहुत आसानियों के मामलात होंगे। और तौबा के बगैर दुनिया से चले जाना, हो सकता है कि इंसान को फिर हसरत हो कि काश मैं तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता। तो तौबा को मामूल बनाना चाहिए और अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगनी चाहिए तौबा इस्तग़फ़ार की, क्योंकि इंसान बाज़ दफ़ा तौबा करने में बहुत सुस्ती इख्तियार करता है और तो बाज़ दफ़ा तौबा उस तरह से नहीं करता जैसे कि होनी चाहिए। अल्लाह ताला इसकी भी हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।